सर्वे वेदा यत् पदम् आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। बालक नचिकेता के प्रश्न का उत्तर आचार्य यम देते हुए कहते हैं, जिस तत्व का संपूर्ण वेद प्रतिपादन करते हैं, तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति, संपूर्ण तप जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए शास्त्र में कहा गया है, ब्रह्मचारी गण जिस परमात्मा को पाने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का अनुष्ठान करते हैं, ऐसा पद परमात्मा तत्व उसका संक्षेप में प्रतिपादन करूंगा। कल आप लोगों ने सविस्तर इसका श्रवण किया था, सर्वे वेदा यत् पदम् आमनन्ति। इसका दूसरा पाद है तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति। यदर्थम, जिस परमात्मा को पाने के लिए सर्वाणि तपांसि वदन्ति, संपूर्ण तप शास्त्र में कहे गए हैं। अनेकों प्रकार के तप हैं, तप के बिना परमात्मा को जानना बहुत कठिन है। तपसा ब्रह्म विजानीयात्, श्रुति कहती है तप के द्वारा हम ब्रह्म को जाने, क्योंकि तप से इंद्रियों की शुद्धि होती है, तप से मन की शुद्धि होती है। मनसा एव इदम् आप्तव्यम्। हम तत्व को जानेंगे तो साधन तो यही है, परमात्मा को जानने के उपकरण यही हमारा मन है, यही हमारी बुद्धि है। इसलिए श्रुति ने कहा कि सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शी भी दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शी भी। तत्वबोध होता है, आत्मज्ञान होता है, हम परमात्मा को जान सकते हैं, लेकिन किसके द्वारा? तो श्रुति कहती है सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शी भी बुद्ध्या। जो पवित्र हैं साधना के द्वारा, तप के द्वारा पवित्र हुई बुद्धि के द्वारा हम जान सकते हैं। और इसके लिए तप बहुत महत्वपूर्ण है। तप माने परमात्मा के मार्ग पर चलते समय जो आपको कष्ट होता है, जो वेदना होती है, उसी को तप बोलते हैं। जैसे आप सत्संग कर रहे हैं तो सत्संग करने में भी बहुत तप है, एक घंटा बैठना है, पैर दुखते हैं, कमर दुखती है, बारिश आंधी तूफान गर्मी आदि सह के भी आपको अपने घर से यहां तक पहुंचना है, ये सारी चीजें तप के अंतर्गत हैं। तीर्थाटन व्यक्ति करता है, ये भी तप के अंतर्गत है। आदमी चलता है, तीर्थाटन माने चलने की प्रक्रिया थी पुराने जमाने में, पैदल चला करते थे लोग। हम व्रत उपवास करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, नवरात्रियों में व्रत रखते हैं, ये आत्म संयम की प्रक्रिया है। ये तप मने संयम की प्रक्रिया है। हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर रहे हैं, इंद्रियों का संयम कर रहे हैं, और ये इंद्रियों का संयम रूप जो तप है ये हमारे इंद्रियों को शुद्ध करता है। और यहां इंद्रियों की शुद्धि का अर्थ कोई कपड़े धोने की तरह नहीं है। यहां इंद्रियों की मन की शुद्धि जैसे हम स्नान करते हैं और अपने शरीर को धोते हैं, स्वच्छ करते हैं, वैसे यहां इंद्रियों की शुद्धि नहीं है। इंद्रियों की शुद्धि माने वासना का क्षय, इंद्रियों की शुद्धि माने सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे इंद्रियों में जो विषयों को पाने का पागलपन है वो कम होता जाए। क्योंकि कल भी इस विषय को मैंने बहुत सूक्ष्म और सविस्तर आपके सामने रखा था, वासना इच्छा कामना हमारे इंद्रियों को जगा देती है, और एक बार हमारी इंद्रियां जग जाती हैं, परांच खाणी वितरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। ये हमारी इंद्रियां बहिर्मुख हो जाती है, परांची फिर वो बाहर खींचती हैं। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं परांची माने बाहर, पर जहां स्व नहीं है, जहां पर हम नहीं है, जहां परायापन है, द्वैत है, वहां पर हमारी इंद्रियां खींचती हैं। ये विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, बाहर के आकार सौंदर्य, ये सारी चीजें हमें खींचती हैं बाहर। और फिर वितरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। वितरणत का अर्थ होता है वो इंद्रियां हिंसा करती हैं, बाहर जाकर बहिर्मुख होकर हिंसा करती हैं। हिंसा का मतलब कि जैसे हमारी इंद्रियां जो बाहर जाती हैं, नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे कष्ट आ पड़ते हैं। व्यक्ति स्वयं परेशान रहता है, अपने इंद्रियों से परेशान रहता है, अपने मन से परेशान रहता है, और ये परेशान होना दुखी होना अपने ही इंद्रियों से, यही है इसका हिंसा करने का स्वभाव। और एक बड़े सुंदर शब्द का प्रयोग किया, वितरणत स्वयंभू। स्वयंभू माने ब्रह्मा जी ने पैदा ही ऐसा किया है, इसका स्वभाव है। जैसे हम आंख में हो तो रूप दिखाई देगा, आत्मा थोड़ी दिखाई देगा। हम जब कान में होंगे तो शब्द सुनाई देगा, हम जिह्वा में होंगे तो रस का अनुभव होगा, त्वचा में होंगे तो स्पर्श का अनुभव होगा। ये तो द्वार है, जिस देश पर व्यक्ति खड़ा होता है वहां से उसको वही दिखता है, दूसरी चीजें दिखाई नहीं दे सकती। हम अपने छत पर खड़े हैं तो हम बाहर की चीजें देख सकते हैं, हम अंदर की अपने घर की चीजें अंदर की नहीं देख सकते। एक स्वाभाविक है, ये इंद्रियां एक द्वार हैं, और द्वार में जब हम पहुंचते हैं तो आत्मदर्शन संभव नहीं, इसलिए नान्तरात्मन, इसलिए अंतर्मुख होना बहुत जरूरी है। ये वासना हमें दरवाजे में पहुंचा देती है, इंद्रियों में पहुंचा देती है, और तप के द्वारा नियंत्रण करना है, तप के द्वारा संयम करना है। और जितना मन इंद्रियां संयमित होगी माने जितना वो निर्वसन होगी, जितना अनासक्त होती जाएगी उतना ही हम अंतर्मुख होते जाएंगे। इसलिए सभी शास्त्रों में तप का विधान है, आत्मनियंत्रण, इंद्रिय संयम। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम् चरन्ति। अब तीसरे पाद में कहते हैं इसके तीन अर्थ हैं, या ब्रह्म शब्द के तीन अर्थ हैं। पहला अर्थ तो सामान्य यही है, ब्रह्मचर्यम् चरन्ति। बहुत सारे साधक ब्रह्मचारी गण, अब यहां ब्रह्मचारी शब्द से आप थोड़ा व्यापक अर्थ लें। ब्रह्मचारी शब्द का अर्थ यह भी है कि ब्रह्मचारी गण आपके चार आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचारी गण जिस परमात्मा को पाने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का अनुष्ठान करते हैं, और इसका व्यापक अर्थ यदि आप करते हैं तो दो प्रकार का ब्रह्मचर्य शास्त्र ने कहा है, एक नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और दूसरा उपकुर्वान ब्रह्मचर्य। नैष्ठिक ब्रह्मचारी का मतलब होता है जिन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लिया है, जैसे साधु संत विरक्त वैष्णव, बहुत से साधक अविवाहित रहकर तत्व को पाने का प्रयत्न करते हैं, उसको बोलते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। और जो गृहस्थाश्रम में रहते हुए संयम का आश्रय लेकर तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं उसको भी शास्त्र ब्रह्मचारी बोलता है, उसको उपकुर्वान ब्रह्मचारी बोला है। वो उपकुर्वान ब्रह्मचर्य है जो संयम, वहां पर भी त्याग है और संयम पूर्वक भोग, वो उपकुर्वान ब्रह्मचर्य। आप यहां पर वो ब्रह्मचर्य भी ले सकते हैं, गृहस्थाश्रम के लोग भी आत्मसंयम पूर्वक सीमित ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जिस तत्व का चिंतन करते हैं। और इसका दूसरा अर्थ है, ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद भी है, ब्रह्मचर्यम का अर्थ है वेदाध्ययनम कुर्वन्ति। बहुत से लोग वेद का पाठ, वेद की ऋचाओं का पाठ, वेदाध्ययन, स्वाध्यायो अध्येतव्य, जिस तत्व को प्राप्त करने के लिए करते हैं। और इसका तीसरा अर्थ है ब्रह्मचर्य, माने ब्रह्म माने ब्रह्म और उस तत्व का श्रवण मनन निदिध्यासन। आत्मा वारे श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, उस ब्रह्म तत्व का श्रवण मनन निदिध्यासन आदि के द्वारा उसको पाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा जो तत्व है, तत्ते पदम आचार्य यम कहते, वो पद जहां बहुत सारे ब्रह्मचारी गण, तपस्वी साधक जिसको पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, ऐसा जो पद है तत्व, उसके बारे में मैं संक्षेप में कहूंगा। और ये जो पद जो शब्द है बड़ा महत्वपूर्ण है, पद गतव और पद स्थैर्य, इन दो धातुओं से ये पद शब्द बनता है। एक धातु है पद गतव, पद गतव का मतलब होता है गतिशील, वो भी पद है जिसमें गति है, जिसमें स्थायिता नहीं है। हम बहुत सारी चीजों को प्राप्त करते हैं लेकिन जो वस्तु प्राप्त करते हैं उसमें स्थिरता नहीं है, तो हम उस पद पर कब तक प्रतिष्ठित होंगे? आप ऐसा समझ लीजिए कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वो कुर्सी कमजोर हो तो आप कब तक उस कुर्सी पर बैठे रहेंगे? वो कमजोर हैं, वो जर्जर हैं, वो धीरे धीरे उसका क्षरण हो रहा है। आप जिस डाल पर बैठे हैं वो डाल धीरे धीरे टूट रही है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसको पाने के बाद भी वो चीज स्थिर नहीं होती है। यही बात आपके श्रीमद् भागवत में कही, जब बालक ध्रुव को मां समझा रही थी, सुनी थी, सुरुचि ने अपमान किया बालक नचिकेता का, अपने पिता के गोद में बैठने के लिए जा रहे थे, ध्रुव अपने पिता के गोद में बैठने के लिए जा रहे थे, सौतेली मां सुरुचि उन्होंने अपमानित कर दिया, गोद से नीचे उतारा, खींचा, बहुत अपशब्द कहे, बालक ध्रुव को बहुत कष्ट हुआ, अपने मां के पास गए रोते हुए, अपनी पीड़ा को अपने मां के सामने रखा, लेकिन वो सुनीति सामान्य मां नहीं थी, बहुत उच्च कोटि की साधिका, सुबुद्ध विदुषी, उसका विवेक जागृत था, उसके मन में राग द्वेषादि विकार नहीं थे, जलन घृणा ईर्ष्या नहीं थी। उन्होंने ध्रुव को बहुत सुंदर उपदेश किया, मां मंगलम तात परेशु मनस्था। उन्होंने कहा कि बेटा मां मंगलम, तुम दूसरे के अमंगल की कामना मत करो, वो तुम्हारी सौतेली मां है, तो मां है, और इसलिए उसके प्रति तुम अपशब्द मत कहो। उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो तुम्हें सत्य कहा है, उसमें भी गाली देते हुए भी अपमान करते हुए भी उन्होंने कुछ सत्य कहे हैं, तो उसके ऊपर दृष्टि रखो। उन्होंने कहा कि तुमको सौतेली मां ने कहा भगवान का भजन कर, कितनी अच्छी बात कही। उन्होंने एक बात बोली तुमको कि तुम भगवान का भजन करो और पुण्य कमाओ, उसके बाद तुम मेरा बेटा बनो और उसके बाद फिर पिता के गोद में बैठने के अधिकारी बन पाओगे। सुनीति ने कहा कि बाकी चीजें छोड़ दो, सत्य को ग्रहण करो, सार ग्राही बनो, गुणग्राही बनो, तुम उतनी बात अपने मां की पकड़ लो कि भगवान का भजन करना है और परमात्मा को पाना है। उन्होंने बहुत गहरी बात बोली, आप यहां पद शब्द को समझना चाहते हैं तो इससे अच्छा दृष्टांत आपको नहीं मिलेगा। मां ने कहा कि पिता की गोद में तुम कब तक बैठोगे, तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो, तुम बैठोगे तो भी कितना दिन तक, क्या तुम्हारे पिता की गोद और वो तुम्हारे पिता का राज सिंहासन पद कितने दिन का है, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष, आप कितना दिन तक उनके गोद में बैठोगे, वो शाश्वत नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो परिवर्तनशील है। ये जो पद है ना, ये पद गतो धातु से बना हुआ है, उसमें गति है, उसमें विसर्जन है, उसमें विनाश है, परिवर्तन है। इसलिए मां ने कहा कि तुम ऐसे पद को क्यों नहीं प्राप्त करना चाहते हो कि जो कभी मिटे ही नहीं, जिसमें कोई परिवर्तन ही ना हो। और वो जो पद है, पद स्थैर्य माने बहुत स्थिर, जो शाश्वत है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, और वो ऐसा अपरिवर्तनीय जो पद है वो परमात्मा का पद है, वहां कोई परिवर्तन नहीं, कोई विकार नहीं, कोई विनाश की प्रक्रिया नहीं। इसलिए मां ने अपने बालक नचिकेता को दिशा दी, उसके अंदर जो मां के प्रति विद्वेष पैदा हुआ था, उस विद्वेष को भी उन्होंने वैराग्य में बदल दिया। ये बहुत ऊंची बात है, निराशा को, हताशा को भी उन्होंने वैराग्य में बदल दिया। और उन्होंने कहा कि तुम इस नश्वर पद के पीछे अपनी शक्ति का राज क्यों करना चाहते हो? अविनाशी पद परमात्मा का, उसको प्राप्त करने के लिए तुम प्रयत्न करो। और उसके बाद फिर ध्रुव में वैराग्य हुआ, क्रांति हुई और वो चल पड़े उस अविनाशी अटल ध्रुव पद को प्राप्त करने के लिए। इसलिए नारायण यहां पर तत्ते पदम, यहां पदम शब्द का अर्थ यही है जो परमात्मा का पद। यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान ने कहा जिसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति वापस लौटता नहीं है और वो अक्षय पद है, न स पुनरावर्तते। वो तत्व, वो मोक्ष रूप पद, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व संग्रहेण ब्रवीमि। मैं तुमको संक्षेप में बताता हूं, आरोप पद क्या है। एक ही शब्द में आचार्य यम ने कहा ओम इत्येतत्। वो पद है ओम। भगवान शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर बात कही, तदेतत् पदम यद बुभुक्षितम। यद एतत् ओम इति ओम शब्दवाच्यम। वो और कोई तत्व नहीं है जिसको तुम पाना चाहते हो, जो अक्षय पद है ओम। ओम आप जब ओम शब्द का श्रवण करते हैं ना, ये परमात्मा का आदि नाम है। इसका बड़ा सुंदर प्रकरण आख्यायिका है। भगवान के नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी पैदा हो गए। ब्रह्मा जी ने बहुत कोशिश की मेरी जड़, मेरा मूल कहां है, लेकिन ब्रह्मा जी जान नहीं पाए और वो चिंतन करने लगे उस कमल के ऊपर बैठकर, अभी मेरे को क्या करना चाहिए। तो भगवान ने अदृश्य शब्द के द्वारा प्रेरणा दी, तप 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 करो तप करो। ब्रह्मा जी सोचने लगे तप तप करने के लिए कोई आधार तो चाहिए, कोई साधना, कोई जप, कोई ध्यान। तो उनके हृदय से शब्द निकले, ओंकारश्च अथ शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा कंठम भीत्वा विनिर्यातो तस्मात् मांगलिकाओ। जैसे ही ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैं क्या करूं, साधना कैसे करूं, उसी समय उनके हृदय से शब्द निकले। परमात्मा ने प्रकट किए ओंकारश्च अथ शब्दश्च। ओंकार और अथ ये दो शब्द निकले, इसलिए ओंकार और अथ ये दोनों शब्द बहुत पवित्र माने गए, क्योंकि वो निरालंबन अनाहत ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हुए। वहां कोई प्रयत्न नहीं है, प्रयत्न साध्य नहीं, वहां पर कोई क्रिया प्रक्रिया नहीं है, कोई वहां इच्छा नहीं, वहां कोई वासना नहीं है। अनायास परमेश्वर के संकल्प से, इसी को बोलते अनाहत, ओम की ध्वनि प्रकट हुई और अथ शब्द। और उसके बाद फिर उस ओम की साधना की ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक उस ओम में धारणा की, परमात्मा की, उस ओंकार का जप किया और उसके बाद फिर भगवत साक्षात्कार हुआ और सृष्टि को निर्माण करने का सामर्थ्य ब्रह्मा जी में आ गया। ओम ओम। और दूसरा जो शब्द है वो अथ। ब्रह्म सूत्र में भामतिकार अथ शब्द के बारे में कहते हैं, ओंकार और अथ, ये दोनों शब्द बड़े पवित्र शब्द हैं। आप इसका अर्थ जानो कि न जानो, केवल ये शब्द सुने आप, ओंकार और अथ शब्द, जैसे वो उदाहरण देते हैं, आपने गांव में देखा होगा, आप यात्रा करने के लिए निकले हैं और जैसे ही घर से आप निकले, उधर से कोई जल लेकर माताजी आ रही हो, कोई महिला आ रही हो और उसके घड़े में जल हो, जल से परिपूर्ण घट माथे पर लेकर जब कोई उधर से स्त्री आती है तो आप उसको मंगलमय समझते हैं। जल से परिपूर्ण घट दर्शन जैसे मंगलमय होता है, वैसे भामतिकार कहते हैं कि ओम जो शब्द है वो मंगलमय है। आप उसके अर्थ को जाने न जाने, आप केवल शब्द का श्रवण कर रहे हैं ओम, और अथ आपके सभी ग्रंथों के प्रारंभ में अथ शब्द आता है। अथ योगानुशासन, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा, ये अथ शब्द अपने आप में मंगल में, और ये ओंकार अपने आप में मंगलमय शब्द है, और वो परमात्मा का वाचक, इसलिए पतंजलि ने कहा तस्य वाचक प्रणव, उस परमात्मा का वाचक नाम है ये प्रणव ओंकार। और यहां पर भी आचार्य यम ने कहा उस तत्व का बोधक, उस तत्व का वाचक ओम है, ओम ओम वाच्यम, ओम का वाच्य जो तत्व है उसको मैं कहता हूं। अब इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देकर श्रवण करेंगे, मांडुक्य उपनिषद में इसका बहुत वर्णन किया है। बहुत आपको बहुत आश्चर्य होगा कि तत्व का प्रतिपादन करने के लिए आचार्य यम ने ओम शब्द का चयन किया है, ये तो आत्मा शब्द का चयन कर सकते थे, क्योंकि वेदांत का श्रवण करने वाले साधकों के लिए आत्मा शब्द और ब्रह्म शब्द का ज्यादा सार्थक प्रयोग मालूम हो सकता था, क्योंकि हमें आदत है वेदांत का चिंतन करने वाले लोगों के लिए आत्मा ब्रह्म साक्षी कूटस्थ त्वंपद लक्ष्य आदि शब्दों की आदत है, अभ्यास है। लेकिन यहां पर उन्हें ओम शब्द के द्वारा उस तत्व का प्रतिपादन करना चाहा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। अपने आप में शब्द महत्वपूर्ण है और उस शब्द का अर्थ भी अति महत्वपूर्ण है। आप मांडुक के उपनिषद में आगम प्रकरण में पढ़ेंगे, वहां बहुत सविस्तर वर्णन किया इसका। ये जो ओम शब्द है इसमें चार चीजें हैं, चार पाद हैं, तो ओम शब्द चतुष्पाद है। योग वाशिष्ठ में जब वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को उपदेश कर रहे थे तो राम जी को यह उपदेश किया, ओंकार मात्र मिदम जगत। उन्होंने कहा कि हे राम, तुम अनुभव करो ये संपूर्ण जो विश्व है वो ओंकार मात्र है, ओंकार मात्र है, ये संपूर्ण विश्व ओंकार मात्र कैसे है, इसका बड़ा सुंदर वर्णन है, आकार उकार और अमात्र। इस बात को बहुत ध्यान देकर श्रवण करें आप। इसमें चार पाद हैं, अ उ और म, ये तीनों मिलकर के बनता है आपका ओम। इसमें एक आकार है, उकार है और मकार, ये दृश्य माने आपको सुनाई देने वाले, दिखाई देने वाले, ये तीन पाद हैं। और एक चतुर्थ पाद है जिसको शास्त्र ने कहा अमात्र, अकार उकार और अमात्र, ये पहले जो तीन पाद है ना वो मात्र है, मात्रा है, और जो चतुर्थ पाद है वो अमात्र है। ये बहुत गहरी बात कही यहां पर। ये आकार उकार मकार में जागृत स्वप्न और सुषुप्ति है। आकार से आप जागृति ले, उकार से आप स्वप्न और मकार से सुषुप्ति। आकार उकार मकार जागृत स्वप्न सुषुप्ति, आप बहुत ध्यान दे के सुनेंगे इस बात को आप। और चतुर्थ जो पाद है वो अमात्र है, ये आपके ओंकार का अर्थ है। आपके ओंकार में चार पद हैं, पाद हैं, अकार उकार मकार और अमात्र। ये पहले जो है ना मात्रा है, और चतुर्थ जो है अमात्र है। और आश्चर्य की बात, अमात्र का अर्थ क्या होता है? मात्रा का अभाव। जो चतुर्थ तत्व है, अमात्र माने मात्रा का अभाव, जहां मात्रा ही नहीं है। और मात्रा शब्द का अर्थ होता है मियते इति मात्रा, जहां नापा जाए, तोला जाए, जाना जाए, जहां उपकरण आदि साधनों का आलंबन लिया जाए, उसको बोलते मात्रा। जैसे आप बोलते हैं ना, ये कितनी मात्रा है, आप कई बार बोलते हैं भैया ये कितनी मात्रा में भेजे, हम आपको भेजना है ये चीजें तो कितनी मात्रा में भेजे, माने वहां नापना है। आपके वेदांत शास्त्र में एक शब्द है बहुत महत्वपूर्ण, प्रमाता। अक्सर ये शब्द आप श्रवण करते होंगे, प्रमाता। और ये जो प्रमाता है ना, प्रमाता का अर्थ ही है नापने वाला। ये आकार उकार और मकार ये मात्रा इसीलिए है क्योंकि जागृत स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं ये नापने वाली अवस्थाएं, ये जीवात्मा नाप लेता है। जैसे हम जब बाहर के पदार्थों को देख लेते हैं तो बाहर के पदार्थों को नाप लेते हैं, हमारी आंख बाहर जाती है और बाहर जाने के बाद पदार्थों को नाप लेती है। कितनी आश्चर्य की बात, हमारे आंखों के सामने कोई व्यक्ति गुजरता है और हम उसको देख लेते हैं, देखने के बाद हमारी आंखें उसको नाप लेती हैं, ये व्यक्ति काला है, ये व्यक्ति गोरा है, ये व्यक्ति इतना फुट ऊंचा है, इसकी नाक ऐसी है, इसकी आंखें ऐसी हैं, इसकी चाल ढाल ऐसा है। हम संपूर्ण उसके व्यक्तित्व को, उसके आकार को, उसके सौंदर्य को, उसकी कुरूपता को नाप लेते हैं। और ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों जो अवस्थाएं हैं ये नापनी की अवस्थाएं हैं। हम जागृति के पदार्थों को नाप लेते हैं और बिना नापे उस वस्तु का मालूम होना भी संभव नहीं है। हम नाप लेते हैं इसीलिए वो वस्तु हमारे मन में आ जाती है, हमारे माइंड में आ जाती है। और उस वस्तु को यदि आप न नापे तो वस्तु आपके माइंड में नहीं आती। एक नक्शा बनता है, ये आकार की संवेदना है, ये दुनिया की संवेदना निराकार की संवेदना नहीं है, एक आकार की संवेदना है, एक आकृति है, एक नक्शा है, जिसको आप स्मृति बोलते हैं, वो नक्शे के अलावा और कुछ नहीं है, एक फोटो है। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं हमारी इंद्रियां बाहर जाती हैं और वो फोटो ले लेती हैं, और वो फोटो क्या, एक आकृति है, एक मात्राएं हैं। और यही तो प्रमाता होना है, यही तो जीव का होना है। प्रमाता माने जीव, जीव के लिए प्रमाता शब्द का प्रयोग किया है। ये अकार उकार और मकार ये मात्रा है, ये प्रमाता की चीजें हैं, ये जीव की चीजें हैं। ये संपूर्ण जगत है, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति। आश्चर्य की बात, आप संपूर्ण जगत को नापना चाहते हैं, संपूर्ण जगत को आप केवल तीन शब्दों में कहना चाहते तो आप इन तीन शब्दों में कह सकते हैं। इस दुनिया में आपकी जो भी अनुभूति है, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, यही तो है। और इन तीनों का अनुभव करने वाले जीवात्माओं के नाम भी अलग अलग। जागृत अवस्था अभिमानी जीवात्मा का नाम विश्व है, विश्व के साथ जुड़ जाता है, व्यक्ति विश्व के साथ जुड़ जाता है, इसलिए जागृत अवस्था के अभिमानी जीवात्मा का नाम विश्व है। स्वप्न अवस्था की अभिमानी जीवात्मा का नाम तेजस है और सुषुप्ति अवस्था की अभिमानी जीवात्मा का नाम प्राज्ञ है। और ये नाम भी बड़े मजेदार हैं। ये जीवात्मा के नाम है, विश्व, तेजस, प्राज्ञ, ये जीवात्मा के नाम, ये प्रमाता के नाम है, ये हमारे नाम है। और इसको प्राज्ञ भी इसीलिए बोला है, प्राज्ञ माने प्र और आगे आज्ञे हैं, अच्छी प्रकार से, प्र माने अच्छी प्रकार से, आज्ञे माने नहीं जानने वाला। हम जब सुषुप्ति में चले जाते हैं तो हम जानने वाले नहीं रहते, हम नहीं जानने वाले हो जाते हैं। जागृत अवस्था में और सुषुप्ति अवस्था में हम जानने वाले बन जाते हैं, बहुत सारी चीजों को हम जान लेते हैं और बहुत सारी चीजों को नहीं भी जानते हैं। ये जागृत अवस्था पूर्ण ज्ञान की अवस्था नहीं है। हम जागते समय पूर्ण दावे के साथ नहीं कह सकते कि हम सब कुछ जानते हैं। यहां पर भी नहीं जानने की प्रक्रिया है, लेकिन जब हम सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं उस समय हम प्राज्ञ बन जाते हैं। प्राज्ञ माने अब हम जानने की प्रक्रिया से रहित हो गए हैं, अब हम नहीं जान सकते, कुछ भी नहीं जान सकते। इसलिए पंचदशी कारण सुषुप्ति के बारे में लिखा, किंचित न अवेदिशम, आदमी की अनुभूति होती है, मैं कुछ नहीं जानता था, मैं सोया था और कुछ भी मेरे को पता नहीं था। यही तो प्राज्ञ होना, ये जीवात्मा का प्राज्ञ होना है। यह हमारे जीव की अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, अकार, उकार, मकार। और एक तत्व है उससे भी परे, जिसको आप अमात्र अमात्र कहते जा रहे थे, उसको बोलते तुरीय तत्व। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और जो चतुर्थ चीज है ना, वो तुरीय तत्व है और ये ओंकार के अंदर है, आप बाहर न समझे इसको। आप जब भी ओम बोलते हैं तो ओम में चारों चीजें हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय चीज। और ये जो तुरीय अवस्था है, ये चतुर्थ अवस्था, उस आत्म तत्व की अवस्था है, ये ब्रह्म तत्व की अवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इन तीनों अवस्थाओं का अनुभव है, जागने का अनुभव, सोने का अनुभव, स्वप्न देखने का अनुभव, लेकिन वो चतुर्थ जो अवस्था उसका अनुभव नहीं है। और उस अवस्था को समझने के लिए आप इतना ही समझ लीजिए कि एक ऐसी अवस्था है कि जहां पर न हम जाग रहे हैं, न हम स्वप्न देख रहे हैं और न हम सो रहे हैं, लेकिन है। आप थोड़ा कल्पना कीजिए, आप थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि वो चीज क्या होगी, वो अनुभव क्या होगा, जहां हम न जग रहे हैं, न हम स्वप्न देख रहे हैं और न हम सो रहे हैं, लेकिन हम हैं। वो जो अवस्था, उस अवस्था का नाम है तुरीय अवस्था। और उसी अवस्था को साक्षी की अवस्था कहा है, उसी अवस्था को आत्मज्ञान की अवस्था कहा। आपको मैं भागवत का एक दृष्टांत देता हूं, ये साक्षी अवस्था को समझने की। आपने भागवत के प्रकरणों में जरूर सुना होगा, सुखदेव जी महाराज भाग रहे थे, घर का त्याग कर अपने माता पिता को छोड़कर 12 वर्ष की उम्र है, भाग रहे हैं, समझा रहे हैं व्यास जी महाराज, उनकी मां समझा रही है, बेटा मत जाओ, हमको छोड़ के मत जाओ। मां तो द्वार तक रुक गई, लेकिन व्यास जी महाराज और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, घर का त्याग कर वन की यात्रा पर चल पड़े। और जब वो गांव छोड़ के वन की ओर प्रस्थान करने लगे, दोनों के बीच में एक नदी है, व्यास जी महाराज जी के मन में पुत्र प्रेम इतना जागृत हुआ है और वो छोड़ना नहीं चाहते, बार बार बेटा बेटा कहते हुए सुखदेव जी महाराज जी के पीछे पीछे जा रहे। और सुखदेव जी महाराज आंखें अर्धोन्मिलित नेत्र हैं और वो बिल्कुल आत्मिक अवस्था में आगे बढ़ते जा रहे हैं। नदी पर बहुत सारी स्त्रियां हैं, स्नान कर रही हैं, वहां से गुजर गए। स्त्रियों ने वस्त्र शरीर पर धारण नहीं किए। एक बहुत अद्भुत बात थी वो। आप सुखदेव जी महाराज जी को पूछे और व्यास जी को पूछे तो आपको जमीन आसमान का अंतर मालूम पड़ेगा। दोनों भी महापुरुष हैं और वो दोनों भी एक अपनी कक्षा में हैं। उस तत्व के बोध से परिपूर्ण दोनों भी हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज जी की उस समय की स्थिति क्या है और उस समय की व्यास जी महाराज जी की स्थिति क्या है। व्यास जी महाराज जी को मालूम पड़ रही थी, स्त्रियां वहां पर मालूम पड़ रही थी, वो स्नान कर रही हैं, मालूम पड़ रहा था, उनके शरीर पर वस्त्र भी नहीं है। और जैसे वहां पर पहुंचे व्यास जी महाराज, उन स्त्रियों ने वस्त्र धारण कर लिया। लेकिन वहां से जब सुखदेव जी महाराज गुजरे तो सुखदेव जी महाराज जी को देख करके उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए। उसका कारण था, जब सुखदेव जी महाराज गुजरने लगे तो उन्हें मालूम ही नहीं पड़ी कि यहां पर स्त्रियां हैं कि पुरुष हैं, वस्त्र के साथ हैं कि बिना वस्त्र की हैं। ये तो साक्षी भाव है। आप सुखदेव जी महाराज जी को पूछना, आप जहां से गुजर रहे थे आपने कुछ देखा क्या? सुखदेव जी महाराज ये नहीं बोलेंगे मैंने देखा नहीं, क्योंकि आंखें थी, गुजर रहे थे, रास्ते से चल भी रहे थे। आपको सुखदेव जी महाराज यही बोलेंगे, देखा जरूर, लेकिन कहना मुश्किल है वो स्त्रियां थी कि पुरुष थे। ये तो साक्षी भाव है। साक्षी का मतलब होता केवल देखना, वहां किसी भी प्रकार प्रतिक्रिया को पैदा करते हैं हम, तो प्रतिक्रिया के साथ हम उस वस्तु के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है हम वस्तु को देखें लेकिन प्रतिक्रियाओं को पैदा न होने दें। हमारा मन प्रतिक्रियाएं पैदा करता रहता है। आंखों से हम किसी वस्तु को देखते हैं और हमारे मन में प्रतिक्रियाएं पैदा होती जाती हैं। जय कृष्ण मूर्ति ने इसको गरुड़ की उड़ान बोला है। उन्होंने कहा कि जैसे आकाश में पक्षी उड़ता है लेकिन अपने पदचिन्ह छोड़ता नहीं है, आकाश में उड़ जाता है लेकिन अपने पदचिन्ह छोड़ता नहीं, वो उड़ जाता है। और वही पक्षी जब जमीन पर चलता है तो अपने पदचिन्ह अंकित करता हुआ, अपने संस्कार छोड़ता हुआ, आपको मालूम पड़ेगा यहां से पक्षी गुजरा है, लेकिन आकाश में आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि यहां से पक्षी गुजरा है। व्यास जी महाराज चल रहे हैं एक पक्षी की तरह और सुखदेव जी महाराज उड़ रहे हैं आकाश में पक्षी की तरह। सुखदेव जी महाराज जी का उड़ना है आकाश में एक पक्षी के उड़ने की तरह। कोई संस्कार नहीं, कोई अन्वेषण नहीं, आंखों के सामने से वस्तु गुजर जाती है और उनके मन में कोई प्रतिक्रिया पैदा नहीं होती है, कोई उसके संस्कार अंकित नहीं होते हैं। इसलिए वहां कहना मुश्किल है कि वहां स्त्रियां थी कि पुरुष थे। एक आकृति आई सामने और उस आकृति के प्रति कोई मन में उत्सुकता ही नहीं है। और बात सही है, उत्सुकता के बिना हम वस्तु को कैसे जानेंगे कि स्त्री है कि पुरुष है। हमारी आंख हमारे अंदर उत्सुकता जगा देती है और उत्सुकता और कोई नहीं, वो वासना का रूप है। और जब उत्सुकता जग जाती है तो हम और तल्लीनता से उस वस्तु को देखते हैं। अब वो देखने की प्रक्रिया क्षणिक भी हो सकती है और वो देखने की प्रक्रिया थोड़ी दीर्घ भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा मन इतना जटिल है, इतना सूक्ष्म है कि वो एक क्षण में भी बहुत कुछ देख सकता है। इसलिए प्रतिक्रिया के साथ जो दर्शन है वो प्रमाता का भाव है, ये जीव का भाव है। और जहां प्रतिक्रिया विहीन जो दृष्टि है देखना, वो साक्षी भाव है। और जहां साक्षी भाव है नारायण, वहां मुक्ति है, वहां मोक्ष है, वहां जीवन मुक्ति है। इसलिए भगवान ने जो पांचवें अध्याय में कहा, पश्यें श्रृण्वन् स्पृशें जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपय श्वसन प्रलपन विसृजन गृहन नुन्मिशन निमिशन्नपि इंद्रियाणिन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्नेत तत्त्ववित्। वहां देखता हुआ भी वो नहीं देखता, यही तो विशेषता है, यही तो अमात्र है, यही तो तुरी अवस्था है, यही तो साक्षी भाव, यही तो जीवन मुक्ति, यही तो आत्मबोध है, यही तो संबुद्धि है। जहां देखते हुए भी नहीं देखता है, ज्ञानी देखते हुए भी नहीं देखता है, वो छूते हुए भी नहीं छूता है, खाते हुए भी नहीं खाता है, चलते हुए भी नहीं चलता है। सुखदेव जी महाराज इसी स्थिति में है, ये चतुर्थ अवस्था। एक बार बुद्ध बैठे हैं, वहां से एक नवयुवती गुजर गई, किसी ने आके पूछा यहां से कोई गुजरा, बुद्ध ने कहा गुजरा जरूर, लेकिन कहना मुश्किल क्या गुजरा, लेकिन हम होते तो सब कुछ बता देते। ये जो चतुर्थ अवस्था, इसलिए यहां दोनों अवस्थाएं, इसलिए आप इसको ऐसा समझे, यहां वाचार्थ और लक्षार्थ, ओम पद का वाचार्थ ये दुनिया है और लक्षार्थ जो है आत्म तत्व। इसलिए भगवान राम ने उपदेश करते हुए कहा, ओंकार मात्र मिदम जगत, ये संपूर्ण जो जगत है ओंकार मात्र है। जब यहां ओम शब्द का प्रयोग किया जाता है तो केवल परमात्मा का वाचक नहीं है, ओम माने सारी दुनिया भी और ओम माने परमात्मा भी, ये दोनों का वाचक है। इसलिए आगे आगे के श्लोक में, आगे के मंत्र में पर और अपर, ये दो भेद से आपको कहा जाएगा। ओंकार का वाच्य ये अपर ब्रह्म है और ओंकार का लक्षार्थ जो है वो पर ब्रह्म है, त्वंपद लक्ष्य प्रत्यक आत्म तत्व ब्रह्म तत्व तुरीय पद। इसलिए चार पाद वाला जो ओंकार है, अकार उकार मकार और अमात्र, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय, विश्व तेजस प्राज्ञ और त्वंपद लक्ष्य साक्षी, इन चार पादों से परिपूर्ण जो ओंकार, यही तत्व है। आचार्य यम ने बालक नचिकेता को कहा, जिस तत्व के बारे में तुम पूछ रहे हो वही तत्व है ओम, और इसको जानना है, हमें जानना है जागृत स्वप्न सुषुप्ति और त्वंपद लक्ष्य परमात्मा। और एक बार हम जान लेते हैं उसके बाद मालूम पड़ता है कि सब कुछ वही है, फिर उसके बाद फिर बाहर कोई चीजें नहीं रहती, हमारे संवेदना के बाहर कोई चीज नहीं रहती, फिर ये सारी चीजें हमारे भीतर, क्योंकि ओम आत्मा का भी नाम है, आत्म वेदम सर्वम, ये सब कुछ आत्मसत्ता ब्रह्म सत्ता। ओम इति संग्रहेण ब्रवी में, बहुत संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा, क्यों बोला संक्षेप में, क्योंकि बहुत शब्द की द्वारा कहने की अपेक्षा अर्थ का अनुभव करना श्रेष्ठ है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, उसको कहने के लिए बहुत सारे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो सुनने वाला और बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो कहने वाला, तो बहुत छोटी सी चीज में वो कह देता है और सामने वाला वो छोटी सी चीज से भी समझ लेता है। बालक नचिकेता भी बुद्धिमान है और आचार्यम तत्वनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी है, इसलिए उन्होंने कहा कि अब शब्द विस्तार की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत संक्षिप्त शब्दों में मैं उस तत्व का प्रतिपादन करूंगा। आज प्रवचन को यहीं विराम, कल आप लोग 16वां श्लोक श्रवण करेंगे, बड़ा सुंदर प्रकरण है। आप सीधे बैठ जाएं। ॐ ह्रीं नमः शिवाय, 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 ॐ ह्रीं नमः शिवाय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।